बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टारगेट पॉइंट के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। डर, खौफ, परेशानी और गुस्सा, ये वो तमाम अलामतें हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के हर शहरी के ऊपर या चेहरे पर नजर आ रही हैं। खसूसन उस वाकये की अगर हम बात करते हैं या इस महीने की बात करते हैं, मुहर्रमुल हराम की, जो महीना हमें कुर्बानी का दर्स देता है और जिसके बारे में शायर ने क्या खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल किए कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ये सबक, ये महीना जिसने कुर्बानी का सबक दिया कि हक के सामने खड़े हो जाएं। ये कुर्बानी किसी खास फिरके, खास अकीदे या किसी खास मसलक के लिए नहीं थी, दुनिया भर के मुसलमानों के लिए इसमें यह सबक था कि हक के सामने खड़े हो जाओ, डट जाओ। लेकिन आज ही के रोज की अगर हम बात करते हैं या इस मुकद्दस महीने की जब जिक्र करते हैं और खुसूसन पाकिस्तान का जब जिक्र करते हैं, तो यहां पर मुसलमानों की ये हालत इजहार है कि एक दूसरे के ही गले काट रहे हैं। और मुहर्रमुल हराम के महीने में जो दहशत गर्दी की एक लहर हम चल निकली, हम जिसको देख रहे हैं कि गिलगित से लेकर क्वेटा, कराची हो या फिर रावल हो, पाकिस्तान के चारों सूबों को दहशत गर्दों ने एक तरह से यरगमाल बनाकर रख दिया गया है। इसमें हुकूमत हमें फेल नजर आ रही है, हुकूमत हमें नाकाम नजर आ रही है, किसी भी किस्म के जो इकदाम हैं सिक्योरिटी के हवाले से किए गए हैं, लेकिन वो लगता कुछ ऐसी है कि नाकाफी हैं और अवाम की जानो माल या फिर जो जुलूस निकल रहे हैं उसमें जो लोग शामिल हो रहे हैं वो किसी भी तरीके से महफूज नहीं है। लगता कुछ ऐसी है कि रियासत इस हवाले से पैरालाइज हो गई है। इस तमाम तर सूरत हाल को अगर हम देखते हैं, जैसे हुकूमती कारकर्दगी का जिक्र कर रहे हैं, तो वो हमेशा ये कह रहे हैं कि जी मोबाइल पर पाबंदी लगा दें, मोटरसाइकिल पर पाबंदी लगा दें, शायद इससे दहशतगर्दी किसी न किसी तरीके से रुक जाएगी। लेकिन जिस चीज का हम जिक्र कर रहे हैं कि पाकिस्तान के आवाम जो इस मुल्क में रहते हैं, उनकी भी शायद अब जिम्मेदारी आ गई है कि वो उठ खड़े हों, अपनी सफों में से दहशतगर्दों का सफाया करें, अपने दुश्मनों को पहचानने की कोशिश करें। और खास तौर पर हम उलमाए दीन का जिक्र भी करेंगे, जिनको लोग मानते हैं, जिनकी बात को सुनते हैं। क्या वक्त नहीं आ गया कि वो आपस के तफरकात को भुलाकर एक जगह पर खड़े हो जाएं और अपने मसले की नजरियात से उठकर कुछ यकजहती का पैगाम दें। शायद इसी से दहशतगर्दी में कमी आ जाए और ये महीना शायद सुकून और एहतराम से गुजर जाए, क्योंकि अब वक्त तकसीम का नहीं है। जब तक तकसीम रहेंगे, दहशतगर्दी की ये लहर शायद ऐसे चलती ही रहेगी। तीसरी कुव्वत जिसे हमेशा कहा जाता है, वो इसी तरह से शायद फायदा उठाती रहेगी। खुसूसन हम आज के प्रोग्राम में जिक्र करेंगे उलमाए दीन की क्या जिम्मेदारी है इस हवाले से, किस तरीके से अमल लाया जा सकता है पाकिस्तान में इस महीने में, और कोई उलमाए दीन बैठकर कुछ मिलकर कोई जाब्ता अखलाक, जाब्ता हयात या कोई लाए अमल तरतीब दे सकते हैं, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अमीन शहीदी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, सरबरा इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के, इब्तिसाम इलाही साहब सेक्रेटरी जनरल जमीयत अहले हदीस, साहबजादा फजल करीम हमें ज्वाइन करेंगे, मौलाना ताहिर अशरफी चेयरमैन उलमा मुशायख काउंसिल, इन सबसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। मुहर्रमुल हराम का महीना पाकिस्तान भर में हम कह रहे हैं एक तरह से हशर बरपा है, कोराम मचा हुआ है, दहशतगर्दी की जो लहर है, फिरका वराना फसादात ने पाकिस्तान को कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया। क्या हुकूमत वक्त इसमें नाकाम हो गई, उलमाए दीन की क्या जिम्मेदारी है, इस पर हम बात करेंगे, गुफ्तगू का आगाज करेंगे। अमीन शहीदी साहब हमारे साथ मौजूद है, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल है मजलिस इबादतुल मुस्लिमीन के, इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब ज्वाइन करेंगे, साहबजादा फजल करीम साहब, मौलाना ताहिर अशरफी साहब से भी बात करेंगे, आप सबसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे। अमीन शहीदी सब आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं, फिरका वाराना फसादात, आप इसको क्या कहेंगे जो मुहर्रमुल हराम में हम देख रहे हैं, आए रोज धमाके, बल्कि एक घंटे के दौरान कितने धमाके हो रहे हैं सब पाकिस्तान में।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं सबसे पहले तो इस बात को डिनाई करूंगा कि ये फिरका वाराना फसादात नहीं है। पाकिस्तान में शिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस सब मिलकर रहते हैं, गली कूचों में कोई इख्तलाफ और झगड़ा नहीं है, आपके बाजारों में कोई इख्तलाफ झगड़ा नहीं है, यूनिवर्सिटीज में कोई इख्तलाफ झगड़ा नहीं है। इसका मतलब है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जाती है कि ये कोई फिरकावाराना फसाद है। फिरकावाराना फसाद कोई नहीं है, ये टारगेटेड दहशतगर्दी है और पाकिस्तान के अमन को तबाह करने की साजिश है। हमें उन साजिशों की निशानदेही करनी चाहिए, उन अनासर की
कौन है, ये
इसकी तरफ आते हैं। देखिए, कल शहादा का जनाजा था पिंडी के अंदर और आपने यकीनन वो देखा कि हजारों का मजमा था, 21 शहादा में से 4 अहले सुन्नत और बाकी शिया थे, सबका मुश्तरका जनाजा हुआ वहां पर, हाथ बांधकर भी लोगों ने नमाज पढ़ी, हाथ खोलकर भी पढ़ी और सबने मिलके पढ़ी, सारे शहादा को एक जगह जमा करके मुश्तरका और इज्तमाई नमाज जनाजा अदा की गई, एक ही कब्रिस्तान में शिया सुन्नी ने मिलकर दफनाया। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में
کوئی ایسا فرقہ بنا
کہیں پر بھی فرقواریت والا مسئلہ نہیں ہے.
لیکن پھر اس کو آگ کون لگا رہا ہے؟ اتنے
دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ آگ لگانے والے کچھ عناصر موجود ہیں جو پاکستان میں امن کو تباہ کرنا چاہتے ہیں, اور وہ ایک انٹرنیشنل سازش کا حصہ ہے, اور وہ لوگ جو پاکستان کے اندر ان کا حصہ بنتے ہیں ان کی کوئی کمی نہیں ہے. جن لوگوں نے ایئر بیسز کو نشانہ بنایا, جن لوگوں نے ہمارے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا آرمی کے, جن لوگوں نے پولیس کے افسران کو نشانہ بنایا, جن لوگوں نے نہتے شہریوں کو نشانہ بنایا, یہ کون لوگ تھے؟ یہ دہشت گرد تھے. وہی لوگ مساجد کو اور امام بارگاہ کو
بالکل نشانہ بنا رہے ہیں, مشترکہ طور پہ نشانہ بنا رہے ہیں. صاحبزادہ فضل کریم صاحب, آپ ذرا یہ بتائیے گا, جیسے امین شہیدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا فرقہ وارانہ فسادات نہیں ہے, لیکن ٹارگیٹڈ فسادات جان بوجھ کر کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے, عالمی سازش ہے ایسی, تو کون سے ایسے عناصر ہیں, ان دشمنوں کو کون بے نقاب کرے گا؟ کراچی کی اگر ہم بات کرتے ہیں, جو دو دھماکے ہوئے وہاں ہم نے دیکھا کہ ٹی ٹی پی نے ذمہ داری قبول کی ہے اس کی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں بہت مشکور ہوں آپ کا, اور میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ یہ جو انتشار اور اشتراک کی نہر دوڑی ہے اس میں بین الاقوامی ہاتھ بھی کار فرما ہے. صدیوں سے یہ اختلافات چلے آ رہے ہیں, کبھی بھی اس قسم کی دہشت اور وحشت کے بازار کو گرم نہیں کیا گیا تھا. آپ اس خفیہ ہاتھ کو بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے جو اس قسم کے افعال کر کے پاکستان کو کمزور اور غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں. حکومت کا کام ہے کہ ان ہاتھوں کو بے نقاب کرے تاکہ پاکستان سے انتشار اور اشتراک ختم ہو سکے.
آپ بالکل کہہ رہے ہیں حکومت کا کام ہے, حکومتوں میں ناکام نظر آ رہی, پنجاب حکومت آپ کو کہیں فعال نظر آ رہی ہے یا وفاقی حکومت آپ کو نظر آ رہی ہے؟ جی موبائل پہ پابندی لگا دیں, موٹر سائیکل پہ پابندی لگا دیں, کیا یہی سیفٹی کے اقدامات جو ہیں, حفاظتی اقدامات یہی کافی ہیں یا اس سے بڑھ کر بھی کچھ کرنا چاہیے تھا؟
حکومتیں کامیاب ہوتی تو اس قسم کے واقعات رونما نہ ہوتے. حکومتوں کی صوبائی کی ہوں یا مرکز کی ہوں, کہیں بھی کوئی سٹ جو ہے وہ نظر نہیں آتی. رول آف لا ہی نہیں گراؤنڈ کے اوپر, اور کسی کی جان و مال, عزت و آبرو جو ہے وہ محفوظ ہی نہیں. اور پاکستان میں ہر شہری چاہے اس کا تعلق کسی بھی طبقے کے ساتھ ہے اور کسی بھی مسلک کے ساتھ ہے, وہ اپنے آپ کو اس وقت غیر محفوظ سمجھتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ دہشت گردوں کو بے نقاب کرنے کے لیے کوئی ایسا میکانزم ہونا چاہیے کہ جس میکانزم کی تائید اور حمایت پاکستان کی تمام پولیٹیکل فورسز اور ریلیجس فورسز کریں, تاکہ اس میکانزم کے اوپر عمل کر کے دہشت گردی کا خاتمہ جو ہے وہ کیا جائے.
دہشت گردی
تو پاکستان کو کھوکھلانا, بالکل پاکستان کو کھوکھلا کرنے کی
تاریخ
ہے. محرم کا مہینہ بڑی تقدیس والا مہینہ ہے, بڑے احترام والا مہینہ ہے. اسلامی سال شروع یکم محرم سے ہوتا ہے, اور یکم محرم میں سیدنا عمر فاروق کی شہادت ہوئی, اور دس محرم کو سیدنا امام حسین پاک کی شہادت ہوئی. یہ دونوں ایسی رول عظم شخصیات ہیں مسلمانوں کے اندر کہ ان کی مثل اور مثال پیش کرنا بہت مشکل ہے. اور سیدنا امام حسین نے حق کے لیے قربانی دی ہے,
حق کے لیے دی ہے, وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک سبق تھا. بالکل
بالکل, یہ صبر کا تھا لیکن وہ نہیں, مطلب
ہمارے یہاں ایسا نظر نہیں آ رہا. ابتسام الہی ظہیر صاحب, آپ سے میں گفتگو کا آغاز کروں گی, یہ اس مہینے کا احترام آپ کو پاکستان میں نظر آ رہا ہے, یہ کون سا دشمن ہے جسے ہم ابھی تک پہچان نہیں سکے, اور آدھے لوگ پہچانتے بھی ہیں لیکن کھل کر نام بھی نہیں لیتے؟
نہیں ایسی بات نہیں ہے, اصل بات یہ ہے کہ پہچاننے یا نہ پہچاننے کی بات نہیں ہے, یہ اسمپشنز ہوتی ہیں اور خدشات بھی ہوتے ہیں, اور بندہ کئی مرتبہ اپنی کو پریڈکشن بھی کرتا ہے. لیکن ایگزیکٹلی کسی کو کہنا کہ فلاں بندہ اس میں ملوث ہے, میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ یہ اصل کام جو ہے نا حکومت اور عدلیہ کا ہی ہے. اس سلسلے میں عدلیہ کو مضبوط مینڈیٹ دینا کہ جس کے نتیجے کے اندر وہ دہشت گردوں کے خلاف مؤثر کاروائی کرے, اور انہیں جو ہے کیفر کردار تک پہنچائے, اور اس سلسلے کے اندر کیپٹل پنشمنٹ جو ہے میں سمجھتا ہوں, اس کے علاوہ جو آئے دن ساتھ سے ہوتی رہتی ہیں وہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. بلکہ کیپٹل پنشمنٹ اگر صحیح معنوں میں لاگو کر دی جائے, دو چار دہشت گردوں کو سر عام پھانسی دے دی جائے, تو میں سمجھتا ہوں اس کے بعد جو ہے کسی بھی قسم کی دہشت گردی جو اس پہ قابو پائے.
لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا دہشت گرد یہ آپ کو نظر آتے ہیں وہ تو خود کچھ حملہ آور ہوتے ہیں یا بم لگا کے چلے جاتے ہیں, کوئی ان کو دیکھ سن نہیں سکتا کہ کس طریقے سے؟
اصل بات یہ ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ حادثات کے اندر خود بھی مر جاتے ہیں, خود کچھ حملہ آور بھی ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود انٹیلیجنس کی اور سرویلنس کے اعتبار سے اطلاعات تو موجود ہوتی ہیں, اور ان کے تانے بانے اگر بنے جائیں تو ان لوگوں تک پہنچنا اتنا مشکل نہیں ہے جس قسم کی سازشیں ملوث ہیں. लेकिन मैं ये समझता हूँ इंग्लिश का मशहूर मुहावरा है देर इज अ विल देर इज अ वे, उसके ऊपर सही मानों में जाना अमल नहीं हो रहा। रॉयल्टी और तरजीहात का सही तयन जो है ना जब तक नहीं होगा उस वक्त तक मामला जो जू के तू रहेंगे। जो इंतजामी इकदाम किए जाते हैं उनके अंदर भी मैं समझता हूँ कि कोई हारमोनी या होमोजीनियस पहलू नहीं होता, बल्कि कई मरतबा वो मजीद फ्रस्ट्रेशन और टेरर यानी एक टेरर क्रिएट कर देते हैं, दहशत क्रिएट कर देते हैं। ये मोबाइलों को बंद करना, मोटरसाइकिलों में बंदी लगाना, इससे बजाय खुद यूं महसूस होता है
कोई अमली कदम तो हमें नजर नहीं आ रहा ना। हुकूमत लगता है कोई पैरालाइज होगी, रियासत पैरालाइज होगी। मौलाना ताहिर अशरफी साहब, हुकूमत अगर चले हम कह रहे हैं बेचारी जी कुछ नहीं कर सकते, तहफ़ुज़ नहीं दे सकते, दहशत गर्दों को पकड़ नहीं सकते, कोई अमली इकदाम नहीं कर सकते, उलमा तो हमारे इकट्ठे हो सकते हैं जो दीगर मसालिक के हैं, सब इकट्ठे हों और मिलकर कोई एक वहदत का जो है एक मैसेज दें लोगों को, इस महीने का एहतराम सिखाएं, क्या सब मुमकिन हो सकता है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल ऐसा मुमकिन है और ऐसा मुमकिन हो सकता है। देखिए इस सारे मसले के दो पहलू हैं और क्योंकि मैं खुद इस तजर्बे से गुजरा हूं, मैंने सुबह पंजाब में इसको कंट्रोल किया था, तो मैं आपसे अर्ज करूंगे एक पहलू तो है उलमा के हवाले से
जी जी,
और एक पहलू है इंतजामिया के हवाले से।
सही।
हम ये कह देते हैं ये बाहर से आए हैं, बाहर के एजेंट हैं, जरूर बाहर इन्हें इस्तेमाल करना होगा, लेकिन ये हैं तो हमारे मुल्क के लोग, हमारे शहरों के लोग, हमारे पाकिस्तानी शहरी हैं। आखिर हम ये क्यों नहीं सोचते हैं कि क्या वजह है कि इस मुल्क के अंदर तमाम मकासिबे फिक्र ने एक दूसरे के लोगों को कत्ल किया है? मैं ये आपसे पहले अर्ज करूं, कोई यहाँ ऐसा नहीं है जिसने दूसरे को ना मारा हो। यहाँ डॉक्टर गुलाम मुर्तजा मलिक भी कत्ल हुए, यहाँ अलामा आरफ हुसैनी भी कत्ल हुए, यहाँ अलामा एहसान इलाही जहीर पर भी बम हमला हुआ,
यहाँ
मौलाना जंगली भी, तो यहाँ पर सबने एक दूसरे के लोगों को मारा है और वो उन मकासिब फिक्र के मंसूब थे जो भी जो है ग्राउंड पर मौजूद है। आखिर क्या वजह है? वजह वो है जो गलीज तकरीरें हैं, वो गलीज लिटरेचर है, जिसको आप पढ़े मैं पढ़ू, मैं तो ना पढ़ सकता हूँ ना आप पढ़ सकती है, आपके पास बैठे हुए हैं अलामा साहब ये भी नहीं पढ़ सकते, इब्तिसाम साहब भी नहीं पढ़ सकते, साहब लोना साहब भी नहीं पढ़ सकते। जब वो लिटरेचर लोगों को बच्चों को दिखाया जाता है कि ये फुला मकतबा फिक्र के लोगों ने ये तकरीर की है, ये लिटरेचर छापा है, उससे जज्बात मुश्तहिल होते हैं और उन जज्बात को फिर वो कुव्वतें इस्तेमाल करती हैं।
इस्तेमाल करके तो फिर इसका मतलब है हमें डिस्टेबलाइज करें, तो हमारे आपस के निफाक हैं, हमारे आपस की कमजोरियां हैं। ताहिर अशरफी साहब आप हमारे साथ ही मौजूद हैं, बड़ी अहम बात आपने की है कि आपस के निफाक और कमजोरी की जिक्र करें, लेकिन शहीदी साहब मैं आपसे जानना चाहूंगी उलमा की तकसीम से दहशतगर्द फिर इसका मतलब है फायदा उठा रहे हैं कि ऐसा लिटरेचर ऐसी बातें की जाती हैं और फिर इस्तेमाल तो दहशतगर्द कर रहे हैं, हमारे लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं इसके।
मैं ताहिर अशरफी साहब की बात के आखिरी हिस्से से इत्तेफाक करता हूं कि ऐसा लिटरेचर जिससे फिरकावारियत फैले इसको किसी भी सूरत में इजाजत नहीं होनी चाहिए,
लेकिन नहीं होगा।
हाँ, इसमें कोई शक नहीं और ये हराम है मेरी नजर में और हमारे बड़े बड़े उलमा ने भी इसको हराम करार दिया है। लेकिन एक अजीब बात यह नजर आती है कि मैं इस वक्त लाइव आपके प्रोग्राम में ये बात कर रहा हूँ कि काजी हुसैन अहमद साहब पर हमला हुआ, किसने किया और किस लिटरेचर की वजह से किया? मौलाना फजल रहमान पर हमला हुआ, किसने किया और किस लिटरेचर की वजह से हमला हुआ? मौलाना हसन जान जो देवबंदी आलमे दीन थे और इंतहाई मोतबर उनका नाम था, पिशावर में उनको तालिबान ने मारा, किस लिटरेचर की वजह से हुआ? इसका जवाब चाहिए। उसके साथ फिर आप देखिए कि गुज़श्ता माह पिशावर में, मानसेरा में, सरगोदा में, लाहौर में घरों के अंदर से प्रेस पकड़े गए, वहां पर मशीनें लगी हुई थी, 200 से ज्यादा किताबें निकलाई और वो किताबें शियों के नाम पर छापी जा रही थी और वही जमात छाप रही थी जिस पर पाकिस्तान में मुशर्रफ दौर में बैन लगा। आपके मीडिया में यह खबर आ गई, आपके अखबारात में यह खबर आ गई, इसके बाद क्या ये कहने की गुंजाइश है कि ये बैरूनी साजिश नहीं है और वो लोग जो बैरूनी डॉलर लेकर ये काम करते हैं वो एजेंट हैं, इसके अलावा किसी और राय तक पहुंचने की अब गुंजाइश बाकी रही है? जब ये सारी चीजें मीडिया पे आ गई हैं तो खुदा रहा आइए मिलके बैठें, बैठ के बात करें और देखें कि कौन लोग हैं वो साजिशी जो इस तरह से आपके नाम पर गालियों पर मबनी एक लिटरेचर छापते हैं, छापने के बाद आपको निशाना बनाने के लिए एक मौका फराहम करते
कुछ भी
हैं।
कर सकते हैं
एक बात। दूसरी बात, काजी हुसैन अहमद साहब को कभी आप निजी तौर पर जाके मिलिए, उन्होंने आज से 12 साल पहले मुझसे खुद ये बात कही कि मैं जानता हूं कि मुतनाजा और गलीज लिटरेचर एक जमात छापती है और छापने के बाद मुखालिफ फिरके के नाम से तकसीम करती है और तकसीम करने के बाद ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करती है जिससे इस तरह के अनासिर को मौका मिले जो बाहर के मफादात के हुसूल के लिए इस मुल्क के अमन को तबाह करने की कोशिश
कर रहे हैं। तो इसका मतलब
मैं इसलिए यह अर्ज कर रहा हूँ कि जब हम कहते हैं कि बाहर की साजिश है तो दलील की बुनियाद पर यह बात कहते हैं, जब हम कहते हैं कि लिटरेचर पर पाबंदी लगनी चाहिए तो फिर उसके असल जड़ तक पहुंचना चाहिए कि कौन ये काम करता है। जाए उन प्रेस के मशीनों को पाबंद करें, उनको
हुकूमत का है ना, रियासत का काम है। इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब, तो फिर क्या तीसरी कुव्वत कौन है, तालिबान है या हमारे अपने लोग हैं जो इस्तेमाल हो रहे हैं दुश्मन के, जो जैसे दुश्मन फायदा उठाना चाहता है उसी तरीके से वो इस्तेमाल हो रहे हैं?
देखिए ये बात यह है कि ये जो तालिबान की एक तारीफ की जाती है और उसके बाद उस तारीफ को फिर वकूओं से जोड़ा जाता है, मैं तो इसका इतना हमनुमा इसलिए नहीं हूँ कि इस वक्त जो अफगानिस्तान की सिचुएशन है उसके अंदर तो वहां के जो तालिबान है वो तो अमरीकी मुदाहलत के लाभ बरकरे पेकार उसी तरह है जिस तरह ईरान के जो सियासी लीडर हैं वो भी अमेरिका को अपने लिए चैलेंज समझते हैं, पाकिस्तान के जो लोग हैं वो भी मजहबी तबका जो अमरीका की मुदाहलत को बिल्कुल सा नजायज समझते हैं। मैं ये बात समझता हूँ किसी ग्रोह का नाम लिए बगैर जो बंदा भी गलत गलीज किताबें छापने में मुलव्वस है और जो किसी मंसूब करके इस तरह का लिटरेचर छापता है उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए, उसका भी एहतसाब होना चाहिए और अगर इस तरह का लिटरेचर छपता है तो उस लिटरेचर छापने के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस किस्म की बात करके कि जिसके अंदर आप अदम्पशन की बुनियाद पर किसी को जो है मुजरम करार दें, मैं ये समझता हूँ। इसीलिए मैंने पहले ये बात की थी कि अदालतों का जो दायरा कार है उसमें इस एतबार से वसूल पैदा होनी चाहिए कि एविडेंस की बुनियाद के ऊपर जो भी दहशतगर्दियों में मुलव्वस है उसको तशद्दुद बाम भी किया जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। अगर कोई उस जो हमारा कोड ऑफ कंडक्ट जो मिली है कौंसल बताया हुआ है जिसमें तमाम मसालिक के उलमा ने जो है तय किया, और मैं इस बात की तहीद करूंगा कि बेशुमार ऐसे उलमा को भी टारगेट किया गया जिन्होंने कोई फिरका वराना मामला।
बिल्कुल, आप हमारे साथ रहेंगे, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा अपनी गुफ्तगू के हिस्से को यहीं से बढ़ाते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। तीसरी कुव्वत का हमेशा जिक्र किया जाता है या आपस के निफाक का जिक्र किया जाता है, तो दहशतगर्दी से कोई महफूज नहीं है, तो इस पर खामोश क्यों हैं हमारे सारे के सारे लोग और क्या हमारे जो उलमाए दीन आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं कि एक टेबल पर ये बैठकर सारे कोई लाहेमल तरतीब दे सकते हैं? मौलाना ताहिर अशरफी साहब, क्या ऐसा मुमकिन है? खामोशी को ये चुप का रोजा कब तोड़ेंगे, कब असल दुश्मन को हम पहचानने की कोशिश करेंगे?
देखिए ऐसा मुमकिन माजी में भी हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह मिली यकजहती काउंसिल आज से चंद साल पहले जो है वो मौलाना समीउल हक की ने बनाई थी, मैं उसका बानी मेंबर था, मौलाना शामन नूरानी उसके प्रेसिडेंट थे और ये तमाम हजरात उसमें शामिल थे और उसमें एक जाब्ता इखलाक भी तय हुआ, लेकिन बदकिस्मती है कि अब तक उस जाब्ता इखलाक को कोई कानूनी शक्ल नहीं दी गई।
लेकिन ये मजलिस ये यकजहती काउंसिल फाल होने पे भी इख्तलाफात मौजूद हैं, अभी भी ये फाल नहीं,
अब
नहीं
तो ये मिली यकजहती, अब तो ये जो मिली यकजहती काउंसिल है देखिए जिसमें एक फरीक हो ही ना और आप कहें जी हम ना हम सालिस बन गए हैं, तो उस मिली यकजहती काउंसिल का मजे की बात यह है कि जो इसका बानी था वो भी इसमें शामिल नहीं है। किताबें सारी ले आते हैं लामा साहब, उनसे बरात का ऐलान करें, हम तो इनके वकील बन के खड़े हो जाएंगे। हम किसी को ये हक नहीं देंगे कि वो ये कहें कि ये फलां की तरफ से किताब आई है। और मुझे बड़ा अफसोस है कि काजी हुसैन अहमद साहब जैसा आदमी अगर तन्हाई में ये कहता है कि फलां जमात ये गलीज लिटरेचर छपवा के पाकिस्तान में तकसीम करवा रही है, तो वो सेनेट के मेंबर रहे, वो जमात इस्लामी के अमीर रहे, अब भी माशाल्लाह उनकी एक हैसियत है, तो वो काजी साहब को आके मीडिया में बताना चाहिए। आज तो एक मीडिया कुवत है इसका मतलब,
लेकिन अभी भी हमने यही सुना उनकी जानिब से कि अमेरिका की जानिब से जो कुछ हुआ ये वहां से ऐसे अटैक हुए।
मेरी नहीं, मैं उस ये अलामा शहीदी साहब ने जो कहा कि काजी साहब ने
लिटरेचर की बात की,
लिटरेचर मैं अर्ज करूंगा कि यही तो वो बात है जिसका रोना रोना है कि जब हम कमरों में बैठते हैं और बात करते हैं, जब अपने लोगों के साथ बैठते हैं और बात करते हैं, जब अवाम में आते हैं और बात करते हैं।
शफी साहब देखिए, अभी 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 गुज़श्ता माह जो चार बड़े शहरों में प्रेस पकड़े गए, वहां से मुजरिम गिरफ्तार हुए, उसका क्या जवाब देते हैं
आप? आप मैं आपकी बात में
जी फरमाइए।
गुजारिश ये है कि जी अगर वो चार शहरों से लिटरेचर के कोई बरामद हुआ है किताबें,
200 से ज्यादा किताबें, मीडिया की रिपोर्ट है, ये मीडिया की रिपोर्ट है, चार शहरों में बड़े बड़े प्रेसेस और 200 से ज्यादा किताबें।
जवाब
प्लीज,
जी जवाब दे
रहे हैं। आज का दिन बड़ा दिन है,
आप बोलिए,
आप मुझे बात कर रहे दीजिए।
जरूर
देखिए, मैं आपसे कहता हूँ
जी,
अलामा शहीदी साहब, मुझे नहीं ये मालूम, मुझे नहीं इनके पास कल इस्लामाबाद में रहता हूँ, को हम बुला लेते हैं, ये वो बता दे, वो रिपोर्ट है, पुलिस
तस्दीक
करे। मैं इनके साथ इस्लामाबाद में बैठकर ये कहूंगा कि अगर किसी जमात ने लिटरेचर छापा है और उसने ऐसे प्रेस लगाए हुए हैं, तो अहले सुन्नत भी उससे बात करे, अहले तशय्युब से बात करे।
बिल्कुल बिल्कुल सही है,
हमारे उन लोगों को ये पता चले, हमारे बच्चों को, कि ये क्या खेल खेला जा रहा है।
बिल्कुल, कि आपस की
बिल्कुल, हम पाकिस्तानी हैं, हम मुसलमान हैं, हमें एक दूसरे के साथ बैठकर
मामले को हल करना है और इसी मुल्क में रहना है, एहतराम हम सब पर लाज़िम है।
माजी में जाने की बजाय हमें मुस्तकबिल की तरफ देखना है। माजी में हम सबसे गलतियां हुई हैं, मैं समझता हूँ कोई यहाँ पर मुबर्रा नहीं है।
बिल्कुल, अब आगे जाना है, आगे देखना है, बिल्कुल बढ़िया,
आगे की तरफ हमारा मुल्क चल रहा है।
सही कह रहे हैं सामिलाई जही साहब, मुझे ये बताएंगे, बिल्कुल मसलक की मफादात से बढ़कर अब आगे बढ़कर नहीं सोचना चाहिए, हमारे उलमाए दीन को सारे इकट्ठे हो जाएं एक टेबल पे, कोई जाब्ता इखलाक बनाए किसी भी हवाले से।
बिल्कुल जी, इस वक्त मैं आपको छोटी बात हूँ, इसकी जरूरत भी बहुत ज्यादा है। ये जो माजी करीब में मिली है कौंसिल के इजलास होते रहे हैं, उसमें बकाया तौर पर जाब्ता इखलाक मुरतब कर दिया गया, जिसमें उलमा अहले तशय्यो ने और उलमा अहले सुन्नत ने इस बात को तय किया है कि जो मुकद्दसात अहले सुन्नत है, क्योंकि जो मुकद्दसात अहले तशय्यो है उनका एहतराम तो अहले सुन्नत के यहाँ पर वैसे नागुजीर है, लेकिन जो एक गलत फहमी है तासुर का अजाला करने के लिए अहले तशय्यो ने भी दस्तक दिए हैं कि काबर साहबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमाई उम्महातुल मोमिनीन की अगर तकफीर करता है तो हम उसको दायरे इस्लाम में शामिल ही समझते। इस साबता हलाक को अगर अवामी सतह के ऊपर जो है प्रमोट किया जाए, इसकी डॉक्यूमेंटेशन अवामी सतह के ऊपर की जाए, तो मैं समझता हूँ मिली जगह की कौंसल का जो जाब्ता हलाक है वो मुल्क में अमन अमान की जमानत देने का बहुत बड़ा बाइस बन सकता है। उसके बाद जितने भी इख्तलाफात मौजूद हैं वो फिर एकेडेमिक नोयत के हैं, उनको हम बैठ के आपस में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इमोशनल सेंटीमेंट तो उसी वक्त हर्ट होते हैं जब काबरीन उम्मत में से या मुकद्दसात में से किसी को आतंकी का निशाना बनाए। जब इसका मुकम्मल तौर पर तमाम उलमा ने इत्तेफाक कर लिया है तो मैं समझता हूँ रियासत अगर इसके ऊपर अमल पैरा होना चाहे तो बिल मौजूद है, जज्बात मौजूद है, नेक तमन्नाएं मौजूद है, उसके बाद तो अब रियासत की जो है ना ये है जिम्मेदारी है कि वो इस ज़ाब्ता हालात के ऊपर अमल दरामद को यकीनी बनाए।
मिली जगजाती कौंसिल फाल हो सकती है, जो बातें कर रहे हैं इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब भी और ताहिर अशरफी साहब ने जो गुफ्तगू की यहाँ पे,
इसमें कोई शक नहीं कि मिली जगजाती कौंसिल एक बहुत बड़ी नेमत है आज के दौर में, और उसमें इस वक्त भी 26 से ज्यादा जमातें मौजूद हैं और अच्छी अच्छी कैलिबर की जमातें मौजूद हैं। फजल रहमान साहब देवबंद के मतबे फिक्र की तर्जमानी करते हैं, उनके नुमाइंदे वहां पर मौजूद हैं, जमात इस्लामी के नुमाइंदे वहां पर मौजूद हैं, शिया नुमाइंदगी वहां पर मौजूद है, अहले हदीस की नुमाइंदगी वहां पर मौजूद है, जो चार बड़े मकातब हैं उनकी नुमाइंदगी, बरेलवियों की नुमाइंदगी वहां पर मौजूद है। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म से हम भरपूर तौर पर फायदा उठा सकते हैं और उन उमूर में जो मुतनाजा है यहाँ पर इस फोरम के ऊपर कई ऐसी कौंसिल्स बनाई गई हैं, कैसी कमेटियां बनाई गई हैं जो उन उमूर पर और उन शोबों में बैठकर काम करें और जो मुश्तरकात हैं, हम ये समझते हैं कि शिया सुन्नी के दरमियान, बरेलवी देवबंदी के दरमियान, अहले हदीस और बरेलवियत के दरमियान बहरहाल कुछ ना कुछ इख्तलाफात इल्मी हैं, जो इल्मी इख्तलाफात हैं उनको इल्मी अंदाज में ही हल होना चाहिए, उसका इलाज कभी भी गालम गलोच नहीं है, उसका इलाज कभी भी तकफीर नहीं है, उसका इलाज कभी भी मारधाड़ नहीं है। ठीक है, अब तक जो कुछ हुआ जैसे भी इन्होंने फरमाया और दुरुस्त फरमाया कि माजी में बहुत सारे लोगों से बहुत सारी गलतियां हुई हैं, हमें मुस्तकबल की तरफ देखना चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन इसके लिए हमें बड़े वसअत कल्बी का मुजाहरा करना चाहिए, समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए, हमारी इस तरह की कमजोरियों से हमारे जो मगरबी दुश्मन है वो भरपूर फायदा उठाते हैं और इस कौम को मजीद तकसीम करने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हमारे पास مشترکات کی جو تعداد ہے وہ فقہی حوالے سے 97% کے قریب قریب مشترکات ہیں جو شیعہ سنی کے درمیان ہیں. یہی کیفیت شاید اہل حدیث اور بریلویت کے درمیان ہو, دیوبندی اور بریلوی کے درمیان.
لیکن آج کی اگر ہم بات کریں, آج اتنا سیریس ایشو ہے کہ بم دھماکے آپ دیکھ لیں جلوسوں پہ,
میں اسی پر آنا چاہ رہا ہوں,
ٹارگٹ کلنگز ہو رہی, مارا جا رہا, خود کچھ حملہ آور ہو رہے, تو پھر ان کو کیسے,
میں اسی پر آنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ مشترکات کے حوالے سے تو ہمیں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے, ہم بڑے آرام سے ان نکات پر مشترکہ قانون سازی بھی کر سکتے ہیں, بیٹھ کر بات بھی کر سکتے ہیں اور مشترکہ رستہ بھی نکال سکتے ہیں, اور اس پر یہ سب ادارے اور تنظیمیں متفق ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ جو لوگ دہشت گردی کرتے ہیں ان کا تو کوئی دین و مذہب ہے ہی نہیں. سوال یہ ہے, میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جو لوگ آرمی کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنا رہے ہیں کسی مسلکی اختلاف کی بنیاد پر تو نہیں بنا رہے ہیں,
وہی
لوگ مزاروں کو نشانہ بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے, نیشنل پارک میں میلاد کے جلوس کو مناتے ہیں اور مارٹن روڈ پہ آزاداری کے جلوس کو نشانہ بناتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ دہشت گردی کرتے ہیں اور اس میں بے گناہ شیعوں کو بے گناہ سنیوں کو دونوں کو قتل کرتے ہیں, آپ دیکھیں نا عاشور میں کراچی کے اندر اتنا بڑا سانحہ ہوا اور اس میں تقریباً 40 کے قریب لوگ شہید ہوئے, اس میں سے 17 اہل سنت تھے اور 23 شیعہ تھے, مشترکہ جلوس تھا نا. کل جو پنڈی میں ہوا اس میں 4 اہل سنت تھے باقی شیعہ تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر شیعہ سنی کا مشترکہ طور پر آپس میں محبت کے ساتھ بھائی چارے کے ساتھ رہنا ناگزیر ہے اور اسی انداز میں رہ بھی رہے ہیں.
مسئلہ
دہشت گردی کا ہے,
دہشت گردی کو روکنا چاہیے. فوکس کریں, یہ جو دہشت گردی ہے محرم الحرام کے مہینے میں, یہ دہشت گردی ہے طاہر اشرفی صاحب, پھر اس کو کیسے روکیں گے؟ بار بار کہا جاتا ہے ریاست کی ذمہ داری ہے, ریاست کرے, ریاست اگر ناکام ہے تو ہم سب مل بیٹھ کر اس سے کیسے قابو پا سکتے ہیں اس پہ؟
دیکھیے میں گزارش کروں کہ آج جس طرح ہو رہی
جی جی,
اگر ہم سب یہ اچھی باتیں جو ہیں ان کو اپنے اپنے لوگوں تک لے جائیں اور بغیر کسی
جی. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلک تو سب کے ہیں لیکن پاکستان میں مساجد محفوظ نہیں ہیں, امام بارگاہیں محفوظ نہیں, ہماری دفاعی تنصیبات خیر سے وہ محفوظ نہیں, بڑے پولیٹیشنز ہیں ان پر حملے ہوتے ہیں, تو یہ پھر ہمارا دشمن کون ہے اور اس دہشت گردی کو ہم کیسے ختم کریں گے؟ تو پھر شہیدی صاحب, دشمن کا بار بار ہم ذکر کرتے ہیں, پھر دہشت گردوں کا ذکر کرتے ہیں, کبھی کوئی تیسری قوت آ جاتی ہے, کبھی عالمی سازش آ جاتی ہے, تو اس جڑ کو کیسے اکھاڑ کر پھینکیں گے؟
دیکھیے ہمیں حقیقت پسندانہ انداز میں ان چیلنجز کا سامنا کرنا چاہیے. ہمیں اس میں کوئی شک نہیں ہے, شک نہیں ہے ہم میں سے کسی کو شک نہیں ہے کہ بہرحال پاکستان کے اندر ایسے عناصر موجود ہیں جو آلے کار بنتے ہیں, پیسے لیتے ہیں, فرقوں کو لڑاتے ہیں یا لڑانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس طرح کے امور میں اپنی جیبیں بھرتے ہیں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی بقا سے جن قوتوں کو خطرہ ہے, جو قوتیں پاکستان کو ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کی شکل میں نہیں دیکھنا چاہتی, ان کے یہاں پر مفادات ہیں, وہ بلوچستان کو الگ کرنا چاہتے ہیں, وہ خیبر پختونخوا کو الگ کرنا چاہتے ہیں, وہ یہاں پر مسلکی اور لسانی فسادات برپا کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے شواہد آپ پر بھی چھپے ہوئے نہیں ہیں اور ہم پر بھی چھپے ہوئے نہیں ہیں. اب جب ان کو آپ موقع فراہم کر دیں تو اس کا نتیجہ خود بخود یہ نکلتا ہے کہ اس طرح کی فضا یہاں پر وجود میں آئے. اس لیے جو چیز اہم ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو قانون اور آئین ہے اس پر عمل درآمد کیا جائے اور رٹ قانون کی وہ قائم ہو. ہماری عدلیہ کی بھی ذمہ داریاں ہیں اور ہماری گورنمنٹ کی بھی ذمہ داریاں ہیں. اب آج تک اگر اتنے سینکڑوں کیسز میں کسی ایک بندے کو گرفتار نہیں کیا گیا, اگر کوئٹہ کے اندر 700 بے گناہ پاکستانی مارے گئے, شیعہ مارے گئے, ایک بندہ گرفتار نہیں ہوا, ایک بندہ,
تو پھر ریاست ناکام ہے نا.
پھر اس کے بعد ہم کیسے کسی ریاست سے یہ توقع رکھیں کہ وہ مجرموں کو روکنے میں کامیاب ہوگی؟ اس لیے ہمیں سب سے پہلا جو کام کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ قانون کی عمل درآمد کو یقینی بنائیں, اور قانون کی عمل درآمد کو یقینی بنانے کے بعد پھر اگلی بات کریں. اس لیے اس کی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں جہاں پر علماء کرام کی ہے, وہاں پر ائمہ جمعہ و جماعت کی ہے, وہاں پر اہل مدرسہ کی ہے, ان کے ساتھ ساتھ ایک بڑی ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے اور ہماری عدلیہ کی ہے, ہماری سیکورٹی فورسز کی ہیں. لہٰذا یہ لوگ اگر اپنی ذمہ داریاں ادا کریں گے تو پھر انشاءاللہ ہمیں یہ توقع ہونی چاہیے کہ پاکستان کو ہم اس گند سے صاف کرنے میں کامیاب ہوں.
ابتسام الہی زہیر صاحب, دشمن اندر ہے ہمارے یا دشمن باہر کا ہے جو پاکستان کو اس طریقے سے نقصان پہنچا رہا ہے؟
देखिए ये बात बड़ी पुरानी चली आ रही है कि जब भी किसी ने अपने मफादात को हासिल करना होता है डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे अमल करता है, तकसीम करो हुकूमत करो के जरिए दुश्मन हमेशा अपने मकासद और अपने मफादात को हासिल करने की कोशिश करता है। शिया सुन्नी दियोबंदी बरेलवी अल हदीस के यहाँ पर जो नजरियाती और इल्मी इख्तलाफात मौजूद हैं वो उस वक्त तक तो बिल्कुल इल्मी नजर आते हैं जब तक जो है बरूनी अनासर जो है अपने मफादात के असूल के लिए यहाँ पर उन अनासर को इस्तेमाल नहीं करते जो नफरतों को प्रमोट करते हैं तशद्दुद को प्रमोट करते हैं। लेकिन फिर हम ये बात भी देख सकते हैं सऊदी अरब हो या दीगर बहुत से दीगर ममालिक हों वहां पर भी मसालिक मौजूद है लेकिन उनके दरमियान कश्मकश मौजूद नहीं। यूरोप के अंदर भी मुसलमानों के जमाते मसालिक मौजूद हैं वहां पर कश्मकश नहीं। ये कश्मकश हमें अगर नजर आती है तो अफगानिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा नजर आई है, उसका पाकिस्तान में नजर आई है, तो उसकी बहुत बड़ी बुनियादी वजह है कि यहाँ पे साम्राज्य की आमद मौजूद है और साम्राज्य में जाहरी बात है कभी लिसानी फसादात को इस्तेमाल करना है कभी आपने उसने मसले की जो मामलात इख्तलाफात को हवा देने की कोशिश करनी है। मैं ये बात समझता हूँ कि उलमा ने जो अभी तक अपना किरदार अदा किया या मजहबी इदारों ने अपना किरदार अदा किया है वो हुकूमत के किरदार से कहीं ज्यादा है। अब फरीक तो असल में या इख्तलाफात तो असल में उलमा के दरमियान मौजूद है ना, लेकिन उलमा ने जिस तहमुल के साथ जिस बुर्दबारी के साथ और जिस अजम के साथ अपने इन तमाम के तमाम मसाइल को टेबल के ऊपर हल करने की कोशिश किया और अपने इख्तलाफात के अंदर जो है टिल्ट दिखाया, झुकाव दिखाया ताकि मामलात किसी भी एतबार से जो है ना तनाजात ना बने, तो मैं ये समझता हूँ कि उलमा ने तो इंतहाई जिम्मेदाराना किरदार अदा कर दिया है। ये उलमा के परक्स इल्जाम लगाया जाता है कि उलमा कौम को लड़ाते हैं लेकिन मिली जगती काउंसिल के प्लेटफॉर्म हो या मजलिस अमल के प्लेटफॉर्म हो इन प्लेटफॉर्म के ऊपर या दिफाई पाकिस्तान काउंसिल का जो प्लेटफॉर्म है इन प्लेटफॉर्म पर जिस तरह उलमा ने यकजा होकर कोशिश की है, इसका मतलब यह है कि उलमा मसले की इतलाफात के बावजूद कौमी जो मसाइल हैं या कौमी मफादात के मुतलका जितने भी मसाइल हैं उनपे अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। तो फिर हुकूमत जो है उसकी ये जिम्मेदारी है कि हुकूमत उन अनासर की बेकनी करे जो इन मामलात के अंदर या तशद्दुद को का रंग देने की कोशिश करे।
बात घूम फिर कर हुकूमत पे आती है, रियासत की जिम्मेदारी आप कह रहे हैं और फिर आपने भी यही कहा कि अदलिया की
जिम्मेदारी को भरपूर तरीके से अदा कर,
बिल्कुल भरपूर तरीके से अदा कर रहे हैं। मैं ताहिर अशरफी साहब से जाने की कोशिश करूंगी, 9-10 मुहर्रम आराम से गुजर जाएगा, जो हम धमाके जो कोहराम हम इस वक्त पाकिस्तान में देख रहे हैं, जो हशर बरपा हुआ है यहाँ पे, तो क्या होगा? हुकूमत तो चले वो यही हमने पहले भी जैसे जिक्र किया, मोबाइल पे पाबंदी है, मोटरसाइकिल पे पाबंदी है, इससे बढ़कर हमें इकदाम नजर नहीं आते। अमन कैसे होगा? इस महीने का एहतराम जो बार बार हम बात कर रहे हैं वो कैसे कायम होगा?
मैं समझता हूँ कि जी अमन के लिए तो अपील की जा सकती है और दुआ की जा सकती है और वो हम सबको करनी चाहिए। कोई भी बेगुनाह इंसान कत्ल हो उसका दुख हम सबके दिलों के अंदर मौजूद होना चाहिए। लेकिन मैं एक गुजारिश करूंगा कि आसमान में बहुत सारे मसाइल है ना, वहां मैं आपको बताऊं अब इस फिरकावारियत में बड़े बड़े कर्जा लोग बड़े बड़े माफी मुलबस हो चुके हैं, उनको ये बात आपकी मदद काम लोगों को बताया जा सकता है, उसकी तरफ भी तवज्जो करनी होगी। मुसलमान जो है अब मजहब की आड़ के अंदर अपनी बदमाशी कर रहे हैं वो अब बड़ा मसला बन गए हैं। अब उलमा और मजहबी कुव्वतें मसला नहीं है, क्योंकि इस रास्ते से जो पैसा मुल्क के अंदर से बत्ताखोरी के जरिए आता है, जो मुल्क के बाहर से आता है, उसने लोगों को अपना असले के जोर पर अपना आप दिखाना जो है वो लोगों ने जाहिर कर दिया है, लेकिन हुकूमत बेबस है। मैं आपके प्रोग्राम में ये अर्ज करूंगा कि जैसा कि अलामा साहब ने कहा है कि हम आज ये बात कह रहे हैं कि कोई तकफीर करे या कोई तबर्रा करे, उसे ये हक नहीं है कि वो किसी के दूसरे मसलक के ऊपर तकफीर करे या उम्मातुल मोमिनीन खुलफाए राशिदीन अहले बैत एतहार सहाबा इकराम उन पर तबर्रा करे। ये अगर हम इस बात पर मुत्तफिक हो जाए तो मैं समझता हूँ जो सप्लाई लाइन के लिए आग मुहैया की जाती है उसमें बड़ी कमी आएगी, उसको आम करना चाहिए। हमें गली गली नगर नगर ये ऐलान करना चाहिए कि कोई सैयदना उमर फारूक का दिन मनाना चाहता है तो वो मनाए, कोई सैयदना हुसैन का दिन मनाना चाहता है तो मनाए।
दिन हर किसी के एहतराम एहतराम होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल बड़ी हम बात कर रहे हैं।
शरीक नहीं होना चाहते हम, ना शरीक हो लेकिन हम एहतराम करें, हम उसको जो है तनकीद ना करें, हम उसके बारे में कोई गलीज तकरीर न करे।
बिल्कुल सही
है। जो करता है, मैं आखिरी जुमला कहूंगा, जो ऐसी तकरीरें करता है उलमा को चाहिए।
बात से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ कि हमें फिरकवाराना जहन रखने वाले मुल्लाओं से भी اور پیسے لے کر فرقہ وارانہ فضا پیدا کرنے والے عناصر سے بھی مجموعی طور پر نہ صرف اپنی براءت کا اظہار کرنا چاہیے بلکہ ان کو اپنی صفوں سے نکالنا چاہیے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہاں پر آپ کے اس فورم پہ دعوے سے لائیو یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہم جن مجتہدین کو اپنے لیے نمونے عمل سمجھتے ہیں اور جن کے فتویٰ کو ہم اپنے لیے خدا کا حکم سمجھتے ہیں, اس لیے کہ ان کا فتویٰ خدا کے حکم کی بیس پر ہے, انہوں نے حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام خامنئی نے فتویٰ دیا ہے کہ اہل سنت کے مقدسات کی بے احترامی حرام ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ان مقدسات کی بے احترامی جائز نہیں ہے, جو بھی کرتا ہے وہ حرام کام انجام دیتا ہے, وہ گناہگار ہے. ہم اس مسئلے میں کسی کمپرومائز کرنے کے قائل نہیں ہیں, لیکن دہشت گردوں کو اپنی صفوں سے الگ کرنا یہ ایک الگ معاملہ ہے.
یہ بڑا سوال ہے.
دہشت گردوں کو کب ہم اپنی صفوں سے الگ کریں گے؟
وہ تو اکٹھے ہو گئے, وہ تو آ گئے نا, وہ تو استعمال ہو رہے ہیں.
میں نے عرض کیا کہ پاکستان کے اندر 26 مذہبی جماعتیں جن میں تمام مسالک کی بنیادی نمائندگی موجود ہے, وہ سب کے سب ملی یکجہتی کونسل کے پلیٹ فارم پر کٹھے ہوئے نا. اگر وہاں پر کٹھے ہوئے تو اب اس بات کی تو گنجائش باقی نہیں رہی کہ شیعہ سنی کا
کوئی ایسا فساد ہے یا کوئی ایسا اختلاف ہے. لیکن دہشت گردی کا کیا ہوا؟
اب تک جتنی دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں اس میں نہ بریلوی بچا, نہ اہل حدیث بچا, نہ دیوبندی بچا, اور نہ شیعہ بچا. یہ الگ بات ہے کہ شیعہ کو سب سے زیادہ ٹارگٹ کیا گیا ہے, لیکن باقیوں کو بھی تو ٹارگٹ کیا گیا ہے,
ہر طرح سے کیا جا رہا ہے.
جب ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب علماء سب ایک طرف ہو کر ایک اتفاق رائے کا اظہار کر رہے ہیں تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ جو لوگ اس طرح کے حملے کرتے ہیں اور جو لوگ ذمہ داری قبول کرتے ہیں وہ سب کے سب امریکی ایجنٹ ہیں, مغرب کے ایجنٹ ہیں, پیسے لیتے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں تاکہ پاکستان کو کمزور کیا جا سکے, چاہے وہ کوئی بھی لباس.
ابتسام الہی ظہیر صاحب, آخری بات کریں گے, آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟
میں بھی یہی بات سمجھتا ہوں, اگر یہ بات طے کر لی گئی, دونوں نکات, طاہر اشرفی صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ اگر ہم کسی کو گالی گلوچ دینے سے اعتراض کر رہے ہیں اور حیار امت کو اون کر رہے ہیں, تو دوسری بات پھر یہی بات رہتی ہے کہ ان عناصر کو جو دہشت گردی یا تشدد کو ہوا دینا چاہتے ہیں ان کو جو نیوٹرلائز کرنا اور ان کو سمجھانا, پہلی بات یہ ان کو سمجھانا چاہیے, ان کو یہ بات کہنی چاہیے کہ آپ علمی انداز میں اختلاف کریں, اگر وہ نہیں سمجھتے تو پھر ان سے برات کا اظہار کرنا یہ علماء کی ذمہ داری ہے, اور علماء اپنی ذمہ داری کو انجام دیتے ہیں تو پھر ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان عناصر کی جو ہے نا ان کا کڑا سلوک کرے جو عناصر عملوں میں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں اور معصوم انسانی جانوں
کو نقصان پہنچا رہے ہیں. طاہر شریفی صاحب, آخری بات.
جی, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بات ہو جائے اور ہم اس کے لیے تیار ہیں علماء کو بٹھانے کے لیے, پاکستان علماء کونسل نے پہلے بھی یہ کیا ہے, آج پھر میں کہتا ہوں علامہ صاحب نے آج بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہمیں یہ پیغام گلی گلی دینا ہے کہ ہم نہ تکفیر کے قائل ہیں نہ تبرع کے قائل ہیں.
بالکل,
تمام مقدسات, تمام مسالک کے, تمام مذاہب کے لوگوں کے محترم ہیں, اور جو لوگ اس بنیاد پر فرقہ وارانہ تشدد میں شامل ہوئے ہیں وہ واپس آ جائیں, وہ مت ان کا حصہ بنے, اور اگر وہ نہیں باز آتے ہیں اور اس کے بعد قتل و غارت گری جاری رکھتے ہیں تو پھر میں تو سیدھی بات میں کہوں گا حکومت اپنا کردار ادا کرے, علماء اپنی صفوں سے ایسے لوگوں کو نکال دیں, اور ہم یہاں پر ایران, امریکہ, افریقہ سب سے بالا تر ہو کر پاکستان کی بات کریں, کیونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں, پاکستان ہے تو ہم سب ہیں,
تو ہم سب کو مل کر اپنا کردار ادا کرنا. جب تک ہم سب اکٹھے نہیں ہوں گے ان کے خلاف تو لوگ پھر ہمیں اسی طرح سے تقسیم کرتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ شہیدی صاحب, ابتسام الہی ظہیر صاحب, آپ سب کا شکریہ. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.